ये आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती पर कल हरियाणा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी सवेरे 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुना नगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट क्षमता वाले दीन बंधु छोटू राम तापी विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी यमुना नगर के मुकरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1,070 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच दूरी 1 घंटे से कम हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर आज पटना में भीम पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे। वे गांधी मैदान से पदयात्रा को रवाना करेंगे जो पटना के विभिन्न इलाकों से गुजरेगी। इस पदयात्रा में मेरा भारत संस्था के हजारों स्वयंसेवी शामिल होंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बड़े पैमाने पर हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी को देखते हुए केंद्रीय बलों की तत्काल तैनाती का आदेश दिया है। अदालत ने विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर यह आदेश दिया। श्री अधिकारी ने अपनी याचिका में कहा था कि राज्य के कई भागों में स्थिति बिगड़ रही है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अप्रैल को समाप्त हुए सप्ताह में 10 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़कर 676 अरब डॉलर से अधिक हो गया। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 9 अरब 7 करोड़ डॉलर से अधिक बढ़कर 574 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच गया था। अमेरिका ने स्मार्टफोन और कंप्यूटर आयात को नए शुल्क से मुक्त रखने की घोषणा की है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा विभाग के अनुसार स्मार्टफोन और कंप्यूटर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश देशों पर लगाए गए 10% शुल्क और चीन पर लगाए गए 145% शुल्क के दायरे से बाहर रखा जाएगा। इस छूट में सेमीकंडक्टर, सौर सेल और मेमोरी कार्ड सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं। सूडान में पिछले 2 दिनों में विस्थापितों के 2 शिविरों पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के हमले में 114 से अधिक लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को जमजम के शिविर में 100 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि अबू शाउक शिविर पर मिलिशिया के हमले में 14 लोग मारे गए। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार की जाएंगी। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। बैसाखी का त्यौहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बैसाखी से ही राज्य के किसान फसलों की कटाई शुरू करते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में इसी दिन जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में नई उम्मीदें, खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। अमेरिका में पिछले 72 घंटों के दौरान 3 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। 2 दुर्घटनाएं न्यूयॉर्क में और 1 फ्लोरिडा में हुई। इन दुर्घटनाओं में कई लोग हताहत हुए हैं। कल न्यूयॉर्क में हडसन के निकट एक विमान दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इस विमान में 2 लोग सवार थे। इससे पहले दक्षिणी फ्लोरिडा में शुक्रवार को एक विमान दुर्घटना में 3 लोगों की जान गई थी। बृहस्पतिवार को एक पर्यटक हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क की हडसन नदी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें सवार सभी 6 लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक के बाद एक हुई इन दुर्घटनाओं के कारण विमानन क्षेत्र और लोगों में चिंता पैदा हो गई है। जांचकर्ता इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने में लगे हुए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में दोपहर बाद 3:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में भी तेज हवा के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।